परिशिष्ट 3, इवाकुरा दूत मंडल, द इवाकुरा मिशन। इवाकुरा दूत मंडल विश्व इतिहास की सबसे अधिक अद्भुत यात्राओं में से एक थी। यह यात्रा 23 दिसंबर 1871 से 13 सितंबर 1873 के बीच हाल ही में गठित हुई मेजी सरकार के प्रमुख सदस्यों द्वारा की गई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं यूरोप की 18 महीने की यात्रा थी। यह दूतमंडल मेजी सम्राट द्वारा आयोजित किया गया था, जिस पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। इवाकुरा तोमोमी ने इस दूतमंडल को मुख्य दूत के रूप में नेतृत्व प्रदान किया। उनके साथ इतो हिरोबुमी, ओकुबा तोशिमिची, किदो ताकायोशी तथा यामागुची माओ इयोशी उपदूतों के रूप में गए। इस दल में कई उच्च सरकारी अधिकारी भी थे जिन्होंने सरकार के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व किया। कुल मिलाकर इस दूत मंडल में 50 सदस्य थे। इनमें से अधिकतर कभी जापान के बाहर नहीं गए थे। इस दूत मंडल के कुछ सदस्यों को विदेशों में रह रहे प्रतिभाशाली एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सफर के दौरान बदल दिया गया था। इसमें कई छात्र भी शामिल थे जिनमें 6 से 15 वर्ष की आयु की 5 कन्याएं थीं, परंतु वे दूत मंडल के सरकारी सदस्य नहीं थे। इवाकुरा दूत मंडल का यात्रा विवरण। स्थान, तिथि, कार्य। स्थान वाशिंगटन, तिथि 4 मार्च 1872 से 22 जुलाई 1872। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से भेंट। हैरिस संधि के संशोधन के लिए आरंभिक वार्तालाप का टूटना। लंदन, तिथि 17 अगस्त 1872। लिवरपूल पधारना 5 दिसंबर 1872। महारानी विक्टोरिया से भेंट। स्थान पेरिस, तिथि 25 दिसंबर 1872। राष्ट्रपति थियर से भेंट। स्थान ब्रसल्ज, तिथि 18 फरवरी 1873। सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय से भेंट। स्थान हेग, तिथि 25 फरवरी 1873। सम्राट विलियम तृतीय से भेंट। स्थान बर्लिन, तिथि 11 मार्च 1873। सम्राट विलियम प्रथम से भेंट। स्थान सेंट पीटर्सबर्ग, तिथि 3 अप्रैल 1873। सम्राट जार अलेक्जेंडर द्वितीय से भेंट। स्थान कोपेनहेगन, तिथि 19 अप्रैल 1873। सम्राट क्रिस्टियन 9 से भेंट। स्टॉकहोम 15 अप्रैल 1873। सम्राट ऑस्कर द्वितीय से भेंट। स्थान रोम 13 मई 1873। सम्राट विक्टर इमैनुअल से भेंट। स्थान वियना, तिथि 8 जून 1873। फ्रांसीसी सम्राट जोजफ प्रथम से भेंट। स्थान बर्न, तिथि 11 जून 1873। राष्ट्रपति सेरेसोल से भेंट। यह दूतमंडल निम्नलिखित 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भेजा गया था। पहला, दूतमंडल सम्राट की ओर से उन 15 देशों जिनके साथ जापान ने मैत्री एवं वाणिज्य संधियां की थी के सम्राटों तथा राष्ट्राध्यक्षों से सद्भावना भेंट के लिए भेजा गया था। दूसरा, दूतमंडल इन राष्ट्रों के साथ हुई विभिन्न संधियों के सही उद्देश्यों के बारे में उनके विचार जानना चाहता था, क्योंकि जापानी इन संधियों को अपमानजनक तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते थे। तीसरा, पाश्चात्य समाज की संपन्नता एवं शक्ति के स्रोतों तथा उसकी ज्ञानोदयता के चरित्र एवं विस्तार का निकटता से निरीक्षण करना। दूतमंडल के लौटने पर देश की विदेशी एवं गृह नीति की पुनर्समीक्षा की जानी थी और उसके सुझावों को नीतियों में शामिल किया जाना था। दूतमंडल 23 दिसंबर 1871 को योकोहामा से चला और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के के जापान मंत्री के नेतृत्व में जनवरी 1872 में सैन फ्रांसिस्को पहुंचा। दूतमंडल ने अमेरिका में कुल 7 महीने व्यतीत किए और यह समय आरंभिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए समय से कहीं अधिक था। इसका कारण यह था कि अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति उलिशस ग्रांट एवं राज्य सचिव हैमिल्टन फिश संधि संशोधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार हो गए, लेकिन जैसा कि इन जापानी दूतों की आशंका थी, वाशिंगटन में उनका अनुभव अत्यंत निराशाजनक एवं निष्फल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि समानतापूर्वक व्यवहार की आशाएं पूरी होने का वक्त अभी बहुत दूर था। इसके फलस्वरूप यूरोप में दूतमंडल ने अपने कार्यक्रम को मैत्रीपूर्वक वार्तालाप तक ही सीमित रखा। उन्होंने 4 महीने इंग्लैंड तथा 7 महीने यूरोपीय महाद्वीप में बिताए। महाद्वीप में दूतमंडल ने फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, रूस, डेनमार्क, स्वीडन, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा स्विट्जरलैंड का दौरा किया। आरंभिक कार्यक्रम में से केवल हवाई, स्पेन तथा पुर्तगाल ही छूटे। वापसी पर दूतमंडल हाल ही में बनी स्वेज नहर के द्वारा हिंद महासागर तथा पूर्व चीन सागर से होता हुआ जापान पहुंचा। दूतमंडल जल्दी जल्दी से दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्य बंदरगाहों तथा दक्षिण पूर्वी चीन के संधि बंदरगाहों को भी देख पाया। यात्रा के दौरान दूतमंडल का राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, राजाओं, रानियों तथा रईसों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। दूतमंडल ने विभिन्न प्रकार की संस्थाओं एवं स्थानों को देखा, जिनमें सरकारी दफ्तर, अजायब घर, संग्रहालय, पुस्तकालय, कला भवन, चिड़ियाघर, सरकारी एवं निजी विद्यालय, ऐतिहासिक स्मारक, वाणिज्य संगठन, नृत्यालय, सर्कस तथा लोमड़ी का शिकार इत्यादि शामिल थे। दूतमंडल के सदस्यों के पत्रों एवं निजी सूचकों के द्वारा स्वयं को जापान की आंतरिक गतिविधियों से भी अवगत रखा। फलस्वरूप दूतमंडल के सदस्यों ने अपनी अनुपस्थिति में हो रहे सुधारों में भी योगदान दिया। दूतमंडल के सदस्यों के अनुभव का पूरा ब्यौरा सदस्यों के सरकारी तथा निजी पत्राचार, उनकी डायरियों, वृत्तांतों, आत्मकथाओं तथा सरकारी रिपोर्टों में मिलती है। सदस्यों ने पाश्चात्य संस्कृति को काफी गुजलदार एवं विविध पाया और उनके अनुसार इसकी शक्ति एवं जागरूकता के विभिन्न स्तर से थे। संपूर्ण क्रम में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस को सबसे ऊपर, जर्मनी को बीच में तथा रूस को सबसे नीचे रखा। जहाँ तक राजनैतिक मामलों का संबंध था, दूतमंडल के सदस्य इस दृढ़ निश्चय के साथ वापस लौटे कि धीरे धीरे जापान के संविधान को आधारभूत कानून के रूप में स्थापित किया जाए। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान दूतमंडल के सदस्यों ने केवल एक बार ही समझौता वार्ता में भाग लिया और वह कोशिश भी नाकाम रही, लेकिन इस अनुभव ने सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पहले से अधिक सुसंस्कृत बना दिया। इसके साथ साथ उनके अनुभव ने उन्हें संधि संशोधन के मामले में भी काफी चौकन्ना बना दिया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी सदस्यों ने काफी कुछ सीखा। सदस्य अब आधुनिक आर्थिक जीवन, विशेषकर औद्योगिक उत्पादन, कृषि एवं उद्योग में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग, यातायात एवं संचार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्रों को भी अधिक कुशलता से समझ सकते थे। कक्षाओं में जाने के बाद उन्होंने सुदृढ़ निश्चय किया कि प्राथमिक शिक्षा सभी पुरुषों एवं महिलाओं और सभी वर्गों के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह अच्छे नागरिक एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधारभूत थी। विभिन्न अजायब घरों तथा प्रदर्शनियों में जाकर उन्होंने जागरूकता के नए शिखरों पर पहुंचने के साधनों को पहचाना। विभिन्न सैनिक एवं नौसैनिक संस्थानों का मूल्यांकन करके वह इस नतीजे पर पहुंचे कि पाश्चात्य विश्व, विशेषकर रूस, से जापान की सुरक्षा को फिलहाल कोई खतरा नहीं था। दूतमंडल के सदस्यों को पूरा यकीन हो गया था कि हालांकि 1800 से 1850 का काल यूरोप एवं अमेरिका के इतिहास में बेमिसाल था, लेकिन फिर भी पश्चिम ने अपनी प्रगति के इस पड़ाव तक पहुंचने में काफी लंबा समय लिया था। इतने लंबे समय में भी उन्होंने अपने इतिहास एवं परंपराओं के लिए सम्मान बरकरार रखा। सदस्यों ने महसूस किया कि परिवर्तन आवश्यक था, लेकिन उसके साथ साथ सुधारों का धीमा, सुव्यवस्थित, विशिष्ट तथा सुनिश्चित होना भी आवश्यक था, ताकि वे जनता की समझ तथा उन्हें अपनाने की क्षमता से आगे न बढ़े। उन्होंने यह भी महसूस किया कि आधुनिकीकरण की क्रिया में जापान को अपना विशेष स्वरूप बनाए रखना चाहिए और उस प्रकार की संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए जो निम्न स्तरीय हो या फिर अव्यवहारिक हो। 1878 में इवाकुरा के निजी सहायक कुमे कुनी ताके ने इस यात्रा का विवरण एक 5 खंडों की पुस्तक के रूप में छापा।